आवश्यक नहीं कर पाएगा, वो अनावश्यक कार्यों में ही अपने पूरे जीवन को लगाए रखेगा। इसीलिए आचार्य भगवंतों ने आवश्यक की परिभाषा लिखी है कि जो इंद्रिय और मन के वशीभूत नहीं है उसके द्वारा जो भी किया जाता है वास्तव में वही आवश्यक है। जो इंद्रिय और मन को जीत ले फिर उसके लिए करने योग्य क्या है, वास्तव में जो करने योग्य है वही वो करेगा, उसके द्वारा अनावश्यक तो हो ही नहीं सकता है। हम तो इंद्रिय और मन के वशीभूत होकर आवश्यक को पहचान ही नहीं पाते, फिर आवश्यक करेंगे क्या? तो आचार्य भगवंतों ने हमारे ऊपर उपकार करके हमें अपने रोजमर्रा के जीवन में क्या आवश्यक है इसके लिए उपदेश दिया है। अगर हम अपने जीवन में उन आवश्यक कार्यों को जो कि अवश्य करने योग्य हैं उतना ही कर लें तो भी हम अपने जीवन को बहुत ऊंचा उठा सकते हैं, हम भी तीर्थंकर के जैसी ऊंचाई पा सकते हैं। आवश्यक अपरिहार्य, जो करने योग्य कार्य है उसे अवश्य करना, जीवन भर करना और यथा समय करना, ये कहलाएगा आवश्यक अपरिहार्य। एक शावक के जीवन में करने योग्य छह आवश्यक हैं, एक साधु के जीवन में भी करने योग्य छह आवश्यक हैं। दोनों अगर अपने अपने उन आवश्यक कार्यों को यथा समय जीवन भर पूरे उत्साह के साथ करते हैं तो यह भावना भी, अपने आवश्यकों को पूरा करने की भावना भी हमारे जीवन को बहुत ऊंचा उठा सकती है। छह आवश्यक सब जानते हैं, शावक के षटकर्माणी दिने दिने, ऐसा हम पढ़ते भी हैं। देव पूजा गुरु पास्ती शास्त्र स्वाध्याय संयम तप और दान, ये छह कर्म शावक के आवश्यक हैं। आजीविका के छह साधन अलग हैं, वे ऐसी मसी कृषि विद्या शिल्प और वाणिज्य है, वे संसार में अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए किए जाने योग्य हैं, लेकिन स्वपर कल्याण के लिए तो देव पूजा इत्यादि षड आवश्यक शावक को करना चाहिए। एक बार अपन विचार करें कि इनमें से हम जो छह आवश्यक हैं इन्हें कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। बिना कोई व्रत इत्यादि ग्रहण किए, बिना कोई प्रतिमा इत्यादि ग्रहण किए, कुछ भी व्रत नियम नहीं ग्रहण किया है, फिर भी एक शावक होने के नाते ये छह आवश्यक तो करना ही चाहिए। सोचिए अगर हम शावक हैं, अपने को शावक मानते हैं, तब क्या हमारे जीवन में ये कार्य हम कर पाते हैं? और सब कार्यों के लिए हमारे पास समय है, लेकिन इन सब कार्यों के लिए समय क्या भावना ही नहीं है? जिनके पास भावना है वे समय का रोना रोते हैं, जिनके पास समय है उनके पास भावना ही नहीं है, वे काय का रोना रोएं? हम सब अपने इस आवश्यक को भी नहीं पहचानते, तो फिर हम कैसे अपने जीवन को अच्छा बनाएंगे? ऐसा विचार हमारे मन में आना चाहिए, किसी के कहने से नहीं, हमारे अपने स्वयं के मन में ये आना चाहिए कि देखो हम पर उपकार करके और हमें जो आवश्यक और अनावश्यक की पहचान नहीं थी वो कराई गई कि आवश्यक तो ये है, इनको ठीक समय पर करना, पूरे जीवन भर करना और उत्साह पूर्वक करना, शेषकारी भी जो संसार के हैं वह तो गृहस्थ के द्वारा सावधानी पूर्वक किए ही जाएंगे, लेकिन उनसे समय बचा करके ये जो छह आवश्यक हैं इनको भी करना। इसलिए समय का तो हम नहीं मिलता ऐसा बहाना ही नहीं बना सकते, हमें तो समय निकालना पड़ेगा। जिनेंद्र भगवान के बिंब के दर्शन करना और उनकी पूजा भक्ति करना, ये रोज के कार्यों में शामिल होना चाहिए। विचार करें कि क्या हमारे पास जिन बिंब के दर्शन, पूजन और आराधन का समय नहीं है। हमारे पास समय है, हमें अपनी भावना बढ़ानी चाहिए तो समय अपने आप निकल आएगा। गुरुजनों की सेवा करना, गुरुजनों के प्रति अपने मन में निकटता का भाव रखना। गुरुजनों के निकट बैठने का नाम गुरुपास्ति नहीं है, नहीं तो उनको और तकलीफ में डालोगे। कि आपने कही थी गुरुपास्ती 24 घंटा उन्हीं के पास बैठे, अब कचूने कर्म दो नहीं। गुरुपास्ती के मायने है गुरु की निकटता महसूस करना, सांसारिक कार्यों के बीच भी मैंने जिसे मोक्ष मार्ग में अपना मार्गदर्शक माना है, गुरु माना है, उसे हमेशा स्मरण में रखूं ताकि मेरे मन में अगर संसार की लोलुपता अज्ञानता घेरे तो वे मुझे उससे बचा लेंगे। उनकी स्मृति मुझे संसार की आसक्ति से और अहंकार से, अज्ञान से बचाने में कारण बनती है, इसलिए सदा उनकी निकटता महसूस करना, उप आस्ते निकट रहना। अकेली आरती कर लेना और निकल लगे सो पांव में गिर पड़ना, अपन तो गुरु पास्ती का मतलब यही जानते नहीं। भाई इससे भी कुछ आगे बढ़ करके विचार करना चाहिए कि उनके चरण जिस मार्ग पर चलते हैं, जिस आचरण का वो पालन करते हैं, मुझे उसका स्मरण तो बना रहे कम से कम। और शास्त्र स्वाध्याय यह भी एक आवश्यक है, रोज अपने कल्याण की दो बातें सीखने की आदत डालनी चाहिए, इतना ही पर्याप्त है। दो बातें अपने कल्याण की जरूर मैं रोज सीखूंगा, जो सीखी है उनका ही स्मरण कर लूंगा, अगर नहीं मुझे सीखने का अवसर मिलेगा तो। और इतना ही नहीं, मैं उनको सिर्फ दोहराऊंगा नहीं, मैं अपने जीवन में उनको धारण भी करूंगा, उन बातों को अंगीकार करके उनका पालन भी करूंगा। ऐसी भावना ये शास्त्र स्वाध्याय है। सुबह दोपहर और शाम तीन समय शास्त्र बांच लेने अकेले का नाम शास्त्र स्वाध्याय नहीं है भैया। अपने जीवन में धर्म आवे और हमारा जीवन धर्ममय हो गए, ऐसी जो भावना है वही धर्म ग्रंथ को पढ़ने की सार्थकता है। संयम तप और दान, संयमित जीवन का अर्थ है अनुशासित जीवन, और अनुशासन के मायने क्या है, अपने इंद्रिय और मन का सदुपयोग करना, ये अनुशासन है। हम सुबह से शाम तक अपने इंद्रिय और मन का सदुपयोग नहीं कर पाते हैं, वही अमर्यादित जीवन है, वही लापरवाही है। आंखें मिली थी दूसरे के गुण देखने के लिए, जो जीवन में सारभूत है उसे देखने के लिए देख लिया, जो निस्सार है जो कि बुरा है, इन आंखों से दूसरे के दोष भी देखे जा सकते हैं, दूसरे के गुण भी देखे जा सकते हैं। आंखों का सदुपयोग तो दूसरे के गुण देखने में है, और मैं दोष देखूं तो फिर मैंने ये आंखें व्यर्थ ही गवा दी। अपने आत्मा के स्वरूप को देखने के लिए दर्शन की सामर्थ्य मिली थी, आत्मदर्शन के लिए मिली थी, जिन दर्शन के लिए मिली थी, मैंने संसार के दृश्यावलियों को देखने में उस दर्शन का उपयोग कर लिया, तो ये तो मेरी इन आंखों का दुरुपयोग ही हुआ। मेरे कान दूसरे की प्रशंसा सुनने के लिए थे, या कि जिनेंद्र भगवान के भक्ति और पूजा के स्तुति के स्वर सुनने के लिए मिले थे, मैं तो इच्छुक हूं दूसरे की निंदा सुनने के लिए और अपनी आत्म प्रशंसा सुनने के लिए। अरे मैंने व्यर्थ ही इन कानों को प्राप्त किया, पता नहीं कर्मेंद्री जो पांचवी इंद्रिय है उसको प्राप्त करने के लिए मैंने कौन कौन से पूर्व में पुण्य किए हुए होंगे, जब पंचेंद्री पना प्राप्त हुआ है। ये कर्मेंद्री जो है आवश्यक कार्य करने के लिए मिली थी, मैं इससे भी आवश्यक कार्य न करके अनावश्यक में ही रुचि लेता हूं, ऐसा विचार करना। एक एक इंद्री का सदुपयोग और मन का सदुपयोग, मन में अच्छे विचार हो, दूसरे के प्रति खोटा भाव ना हो, दुर्भावना ना हो, ये मन का सदुपयोग है। लेकिन क्या करें, मन की चाल, मन का संस्कार तो ऐसा है कि दूसरे के बुरे के बारे में ही, अहित के बारे में ही विचार करता है ये मन, और अपना भी अहित जिसमें है उसी में चला जाता है। जो स्वान सा मन मैं शोध लाता, मैं इसे कितना भी सद कार्यों में लगाए रखता हूं, आचार्य भगवंत कह रहे, लेकिन ये मन तो स्वान के समान है कि जिसे कितनी भी बढ़िया चीजें खिलाएं पर जरा आंख चूकती है और नाली में से विष्टा ही खाने की इसकी आदत है। ये स्वान सा मन मल शोध लाता, गंदगी में ही जाकर के इसे आनंद आता है। मैं इसे कितना भी भली चीजों में मन को लगाए रखता हूं पर जहां थोड़ा सा चूका और ये मन वहीं अपवित्र वस्तुओं में ही जाता है, अपवित्र विचारों में ही चला जाता है। ऐसा मन में भाव आना चाहिए कि मैं दिन भर में अपने मन का कितना सदुपयोग करता हूं, या मेरा पूरा मन लाभ हानि जय पराजय हर्ष विषाद में ही लगा रहता है, वह व्यतीत हो जाता है। कभी अपने और दूसरे के कल्याण का भले का विचार भी आता है या नहीं आता। हम अगर विचार करें तो पांचों इंद्रियों का हम सदुपयोग कर सकते, मन का सदुपयोग कर सकते, इसी का नाम संयम है। अकेले थाली पे कछु चीजें न खाना और खाने का नाम संयम तो बहुत अपन ने व्याख्या करी ऐसी। परी के ही नहीं करी। संयम का अर्थ अपन ने अभी तक ये लिया है कि ये चार चीजें खाने, ये चार चीजें नहीं खाने, जो होगा ना संयम भैया वो भी है संयम, ऐसा नहीं है कि नहीं है, वो भी है, लेकिन वो बाह्य है। अंतंग में हमारे अपने इंद्रिय और मन के सदुपयोग की भावना भी तो होनी चाहिए कि मैं इनका समान के उपयोग करूंगा, बड़ी मेहनत से मैंने इन चीजों को हासिल किया है। वरना अधिकांश क्षुद्र जीव तो एक इंद्री, दो इंद्री, चार इंद्री तक ही हो करके और अपना जीवन व्यतीत करके मर जाते हैं, और पांच इंद्रियां भी हुई और मन नहीं हुआ तो अज्ञानता में ही जीवन व्यतीत कर देते। हमने तो पूर्व संचित पुण्य के फलस्वरूप और पांच इंद्रियां और मन प्राप्त किया, तब उन सबका सदुपयोग हमारे द्वारा किया जाए। तपस्या ज्यादा कठिन नहीं है, तपस्या भी यही है कि मैं अपने मन और इंद्री को जैसे नियमित करता हूं, उसका सदुपयोग करता हूं, ऐसे ही मैं उसको जीत लूं। नियंत्रित करना और जीतना दोनों में जितना फर्क है उतना ही संयम और तप में फर्क है। संयम में हम जीवन को अनुशासित होकर जीते हैं और तप में हम अपनी इच्छाओं को जीत लेते हैं। इतना ही अंतर है, चाहे तो संयम और तप दोनों कर सकते हैं। इच्छाएं तो सुबह से शाम तक अनंत उठती हैं, पूरी तो सब हो नहीं पाती, जो नहीं पूरी हो पाती वे संतोष देखे जाती हैं, जो पूरी हो जाती हैं वे मेरे मन में अहंकार उत्पन्न करके चली जाती, और इससे ज्यादा तो मेरा कुछ काम इनसे नहीं बनता। तब उन इच्छाओं से तो ऊपर ही उठना चाहिए, पूरा करना भी चाहिए, तो सुपर कल्याण के लिए जो इच्छाएं हैं वही पूरी करेंगे, शेष इच्छाएं पूरी नहीं करेंगे। और अपने पास जो चीज अनावश्यक है और दूसरे के उपकार में वो आ सकती है तो उस वस्तु को दे करके उसका उपकार करना, यही तो दान की प्रक्रिया है। जाने कितनी चीजें होंगी हमारे पास अनावश्यक जो दूसरे के काम आ सकती हैं, कभी भावना तो बननी चाहिए कि दूसरे के काम आ सके तो मैं इन्हें दे दूं, दूसरा स्वीकार कर ले तो ही दे सकता हूं, दूसरा स्वीकार ना करे तो कैसे दे सकता हूं। इस तरह यदि हम इन छह आवश्यकों को, बहुत सामान्य सी चीज है ये, सबको इसके बारे में ज्ञान होना चाहिए है भी, इन छह आवश्यकों को हम समय से करें, जीवन भर करें। आचार्य महाराज अपने आवश्यक कार्य करने में अत्यंत सावधान और सजग है। हमने बहुत लोगों की चर्या देखी, हमारी अपनी चर्या भी हम जानते हैं। आवश्यकों में कमी तो नहीं होती, लेकिन यथा समय करना चाहिए वह कभी कभी नहीं हो पाता, लेकिन आचार्य महाराज के साथ ऐसा नहीं है। इतनी बड़ी संघ की जिम्मेदारी के बावजूद भी वे अपने आवश्यक कार्यों को यथा समय, जितने समय पर करना उतने ही समय करते हैं। एक बार विहार करते हुए चले जा रहे थे, 20 किलोमीटर चले, सभी थक गए थे, जाकर के जहां स्थान पर पहुंचना था वहां बैठ गए पाटे पर, तो हम सब लोग जो है आचार्य महाराज के पैर दबाने लगे। तो आचार्य श्री बोले, तुम लोग भी तो चल के आए हो, बैठो। कहे हम लोग तो आपके पैर दबा के ही और अपनी थकान दूर कर लेंगे। तो हंसने लगे, फिर हंसते हंसते बोले कि मन तो ऐसा कर रहा है कि थोड़ा लेट लिया जाए, थक गए हैं बहुत। तो हम लोग तो बिल्कुल तैयार ही बैठे थे कि आप कहो भर तो सबने समर्थन कर दिया कि हाँ चश्य आप थोड़ा लेट लीजिए ना, हम पैर अच्छे से दबाएंगे। तो जैसे ये सुना, पीछे उठाई और खड़े हो गए। बोले मन तो करता है कि लेट जाए, लेकिन आत्मा तो कहती है कि समय समय का हो गया, इसलिए अब तो समय करूंगा। ये अपने समय अपने आवश्यकों के प्रति जो सजगता है, सावधानी है, ये उस चीज की प्रेरणा हमें देता है। क्या ऐसा ही हमारे जीवन में उतनी सजगता है, होनी चाहिए। हम अपने आवश्यकों में कमी ना करें, उन्हें यथा समय और पूर्ण रूप से जितने अपनी सामर्थ्य है उतना करें। एक घंटे पूजा नहीं कर सकते भैया, दस मिनट कर सकते। बहुत बड़ा कोई त्याग नहीं कर सकते हैं, त्याग की भावना तो भा सकते हैं। जीवन में ज्यादा संयम नहीं ग्रहण कर सकते, पर जीवन को अनुशासित तो कर ही सकते हैं। ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे कि किसी के प्राणों का घात हो, इतना तो कर सकते। ऐसे छोटे छोटे से भी अगर अपन अपनी सामर्थ्य के अनुसार कार्य करें जो आवश्यक है, तो वे आवश्यक कार्य भी हमारे जीवन को बहुत ऊंचा उठा सकते हैं। साधु के छह आवश्यकों में उनको भी अपन जान लें, क्योंकि साधु बनने की भावना तो भानी चाहिए। सामायिक, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, वो छह डाला वाले नहीं चलेंगे। हाँ, यहां तो आचार्य कुंद कुंद साम वाले चलेंगे। समता समारे तुति उचारे वंदना गुणदेव को नित करें श्रुति रति, ये वाला नहीं चलेगा। नित करें प्रत्याख्यान प्रतिक्रम तजें तन अहमेव को, ये वाले छह चलेंगे। स्वाध्याय आवश्यक नहीं है साधु के लिए, उसके लिए प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान और कायोत्सर्ग ये आवश्यक है। सामायिक वंदना स्तुति तीन ये, और प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान और कायोत्सर्ग ये छह आवश्यक आचार्य कुंद कुंद स्वामी के अनुसार कहे गए हैं। उन छह आवश्यकों को वो अनिवार्य रूप से करता है। तो कहते फिर स्वाध्याय नहीं करेंगे क्या? दिखाते हो कि ज्ञान ध्यान तपो रखता है तपस्वी सह प्रशस्त। ज्ञान और ध्यान में जो लगे रहते हैं वे तपस्वी ही प्रशंसनीय है। तो कहते कि प्रतिक्रमण भी स्वाध्याय ही है। प्रत्याख्यान करना, पांच पापों का त्याग कर देना, यह भी स्वाध्याय का फल ही तो है, वो प्राप्त हो गया। और शरीर से ममत्व छोड़ करके काय उत्सर्ग में लीन होना और अपने आत्मा का चिंतन करना, ये तो स्वाध्याय है। और इससे अलग किस स्वाध्याय की बात करते हैं? स्वा अभी आत्मानं अध्येति इति स्वाध्याय, अपने आत्म परिणामों को ही निकट से टटोलना, ये स्वाध्याय है। अकेले किताब में आंख जमाए रहने का नाम स्वाध्याय नहीं। बुरा नहीं मानना भाई, किताब पढ़ने की आदत न छोड़ना, वो तो जरूर पढ़ना, लेकिन उसको पढ़ करके भीतर भी तो थोड़ी आंख खोल के टटोलना अपने परिणामों को, इसके लिए कह रहे हैं। नहीं तो आप उसका अन्यथा अर्थ लेकर के बाद में चर्चा का विषय बनाओ कि महाराज तो स्वाध्याय की मना कर रहे थे। बड़ी जल्दी अपन जो है ऐसी उसी में से खोटी जो अपनी बुद्धि है उससे अपनी चाल नहीं छोड़ेंगे, अपन उसमें से दो निकाल ले। हाँ, उसमें से जो अपन निकालना चाहेंगे अच्छी बात में से भी बुरी निकाल लेंगे। को नहीं, आशा उसका ये नहीं है। आशा ये है कि वो तो स्वाध्याय 24 घंटे करते हैं, उन्हें अतिरिक्त शास्त्र स्वाध्याय की आवश्यकता नहीं पड़ती, उनके स्वाध्याय का ढंग अलग है। वे स्वाध्याय नहीं करते हैं, नहीं, उनके स्वाध्याय का ढंग अलग है। वे प्रतिक्रमण करके ही अपने परिणाम संभाल करके स्वाध्याय करते हैं। वे आगामी जीवन में पापों का त्याग करने का संकल्प लेकर के, जैसे चार प्रकार के आहार ग्रहण करके आते ही साथ भगवान के सामने कायोत्सर करते कि अब कल तक के लिए मैं समस्त आहार का त्याग ही क्या, आहार के विचार का भी त्याग करता हूं, विकल्प का भी त्याग करता हूं, अब दिन भर में उसकी कोई चर्चा नहीं उठाऊंगा। ये प्रत्याख्यान, मन में विकल्प भी नहीं लाऊंगा, ये कमती स्वाध्याय नहीं है, ये बहुत बड़ा स्वाध्याय है। शरीर से ममत्व छोड़ करके अपने आत्मा में स्थित होना कायोत्सर्ग है। भगवान जिनेन्द्र के गुणगान करना 24 तीर्थंकर की वो स्तुति है, और किसी तीर्थंकर विशेष या गुरुजनों के प्रति जो मन में विनय का भाव है वो वंदना है। दोनों अलग अलग रखे हैं, वंदना और स्तुति। भगवान के जिनालय में जाकर के भी संपन्न की जा सकती है, और अगर जिनालय नहीं है तो मुनि के लिए लिखा कि तुम स्वयं तीर्थ हो, अब अतिरिक्त और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। यहां तक अष्टपाहुल में आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने लिखा। फिर भी भगवान की स्तुति अपने स्थान पर बैठ करके ही करेंगे, और 24 घंटे समता भाव रखने की साधना करना, और कम से कम सुबह दोपहर शाम तीन संध्या कालों में तो अवश्य ही समस्त अन्य कार्यों से भी निवृत्त होकर के आत्मस्थ होने का अभ्यास करना, ये 6 आवश्यक शावक के भी वो साधुओं के भी हैं। इनसे भी हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। ये सब चीजें, इन सबकी भावना, अकेले श्रावक के 6 आवश्यक की भावना बांधने से काम नहीं चलेगा। आवश्यक अपरिहार्य के मायने हैं कि श्रावक अपने आवश्यकों को करे, लेकिन भावना भावे कि मैं कभी महाव्रत धारण करके जो महाव्रति के 6 आवश्यक है उनका पालन करूं, और मुनि महाराज अपने 6 आवश्यकों का पालन निर्दोष विधि से करें, यही आवश्यक अपरिहार्य 16 कारण भावनाओं में से एक भावना है जो सफल कल्याण में निमित्त भूत तीर्थंकर प्रकृति के बंध का कारण बनती है। अगर अपन विचार करें कि ये 6 आवश्यक चाहे साधु के हों चाहे श्रावक के हों, वो क्या सिर्फ स्वकल्याण में निमित्त है या कि पर कल्याण भी होता है, तो विचार करने पर ज्ञात होगा कि दोनों का ही कल्याण होता है। भगवान जिनेन्द्र की पूजा करने में भी स्व का ही नहीं पर का भी कल्याण होता है। कैसे? अपने परिणाम निर्मल होते हैं तो दूसरे का आहित करने का उतने देर का मन नहीं होगा, उतना पर का कल्याण हुआ कि नहीं हुआ। ऐसा हर आवश्यक को विचार करके देखें तो जो जीव अपने कल्याण के कार्य में लगा है उसके द्वारा उतनी देर तक पर का अकल्याण नहीं हुआ, यही पर का कल्याण है। दूसरे का अकल्याण नहीं करना इतना ही पर्याप्त है, दूसरे का कल्याण अपन का करेंगे, वो अपन को अपने कल्याण में निमित्त बनावे सो बना लेवे। कल्याण तो हर एक को अपने अपने अलग अलग करने पर है। अपन तो अकेले कल्याण न करें, एक तो कल्याण का करेंगे अपन दूसरे का, ऐसा विचार अपने मन में बना रहना चाहिए कि मेरे से किसी का अकल्याण ना, मैं उसे अकल्याण के मार्ग पर ना लगाऊं, लगाऊं तो कल्याण के मार्ग पर ही लगाऊं। इस तरह अपने कल्याण के साथ साथ पर कल्याण की भावना चूंकि इसमें छिपी हुई है, इसलिए इसे 16 कारण भावनाओं में रखा गया है। मैं सोच रहा था कि अपने आवश्यकों की पूर्ति करने में भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध होगा। क्यों? इसलिए होगा क्योंकि उसमें भी दूसरे के कल्याण की भावना छिपी हुई है। उसके बिना तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता जब तक सफर कल्याण की भावना नहीं होगी। एक छोटी सी घटना सुनाता हूं और फिर उसके बाद विराम लेंगे अपन। श्रावक और साधु दोनों अपने आवश्यक कार्य को करते हैं। उद्देश्य क्या है? अपने आत्म कल्याण के साथ साथ पर का कल्याण। ऐसी जो भावना है वही आवश्यक के पीछे उद्देश्य छिपा हुआ है। और जब मैं बहुत विचार करता हूं तो पाता हूं कि आखिर में बात वहीं आकर के रुकती है। किसी भी माध्यम से, चाहे दर्शन विशुद्धि हो, चाहे विनय संपन्नता हो, कोई भी 16 कारण भावनाएं हो या 10 लक्षण धर्म आने वाले हैं उनमें भी विचार करेंगे अपन 10 धर्मों का, तब भी अंत में आकर के बात वहीं रुकती है कि मेरे अपने जीवन को निर्मल बनाना और अपनी उस निर्मलता से दूसरे का भी कल्याण करना, बात इतनी सी है। और अपने मन को हम कलुषित करते हैं तो अपना भी और दूसरे का भी। अपन दुखी हो गए तो अपने आसपास का वातावरण भी दुखी हो जाता, और अपन प्रसन्न हो गए तो अपने आसपास के वातावरण में भी प्रसन्नता होती, इतना असर पड़ता। कोई ये कहे कि हम दुखी हैं तो तुम्हें का तकलीफ नहीं भैया, आपके दुखी होने से सारा परिवेश वह भी प्रभावित हुए बिना नहीं रहेगा। इसलिए जो आत्म कल्याण करता है वो वास्तव में प्राणी मात्र का कल्याण करता है। बात सिर्फ इतनी ही है। एक छोटा सा उदाहरण जो शायद आप सबने भी, मैंने आचार्य महाराज से बहुत पहले सुना था, पढ़ा तो मैंने बाद में कई जगह पढ़ा, पर आचार्य महाराज इसको बहुत पहले 1977 में ये सुना। बहुत अच्छे से आचार्य महाराज सुनाते हैं उदाहरण। एक व्यक्ति बहुत अच्छा कलाकार था, उसने एक छोटे से बालक का सुंदर सा चित्र बनाया। वैसे भी वो कलाकार प्रसिद्ध था, लेकिन उस बालक के सुंदर चित्र को बनाने से उसकी कला और अधिक प्रशंसनीय हो गई। चारों तरफ उसका यश, उसकी ख्याति फैली। वो चित्र हर घर में लोगों ने लगाया कि कितना सुंदर, कितना सरल निश्चल ये बालक है, कितना भोलापन इसके भीतर है, कितनी प्रेरणा हमें मिलती है कि हम भी इसके जैसा ही अपना जीवन बनाए। बालक के जैसा जीवन बनाने का मतलब हो कि उतनी सहज, सरल, निर्विकार और निश्चल। जीवन के वर्षों बीत जाने पर उस कलाकार के मन में विचार आया कि कोई ऐसा भी चित्र बनाऊं जो कि मनुष्य के भीतर की विकृति को उसके चेहरे पर प्रकट करे। यह बालक का चित्र तो मनुष्य की अंतरंग की निर्मलता का चित्र है। मैं एक ऐसा भी चित्र बनाऊं जो कि मनुष्य के भीतर की विकृति को बाहर चेहरे पर प्रकट करे। अब ऐसा व्यक्ति कहां से मिले जो इतना क्रूर हो, खूंखार हो, हिंसक हो, जिसके चेहरे पर उतनी विकृति झलकती हो, उसका चित्र चाहिए। ढूंढता रहा वो, उसने सोचा कि ऐसा व्यक्ति तो अपराधी जेल में ही मिलेगा। सो जेल में जाकर के ढूंढा और सचमुच उसे एक ऐसा चेहरा मिल गया जो अत्यंत खूंखार उसके चेहरे से ही और दुर्भावना टपकती थी। सलाखों परमिशन ले ली कि मैं चित्र बनाना चाहता हूं। जेलर ने कहा बनाओ, बाहर बैठ करके और उसका चित्र बनाता है। वो कैदी कुछ नहीं बोलता, लेकिन जब चित्र बन के तैयार हो जाता है तब वो कलाकार अपनी थैली में से वो जो अपना बालक का बनाया हुआ चित्र है वो भी उसके पास रख के दोनों को देखता है कि एक है मनुष्य का अत्यंत निर्मल चेहरा और एक है मनुष्य के भीतर की विकृतियों का चेहरा, दोनों में देखो कितना अंतर है। ये भी मनुष्य है, ये भी मनुष्य है। जैसे ही दोनों चित्र एक साथ रख करके देखता है वो जो इतना क्रूर इतना अपराधी कैदी वो फूट फूट कर रोता हुआ दिखाई पड़ता है। इसे बड़ा आश्चर्य होता है कि ये तो गड़बड़ हो गया, मैंने तो ये सोचा था कि इसके भीतर तो कहीं कोई निर्मलता हो ही नहीं सकती, और इसकी आंख में आंसू आ गए, ये फूट फूट के रो रहा है, यानी इसके भीतर भी कहीं ना कहीं कोई अच्छी चीज तो है। भले ही ये किसी संस्कारवश और इतना क्रूर हो गया है। थोड़ा शांत होने पर पूछा कि भाई मेरे चित्र बनाने से क्या तुम्हें कोई चोट पहुंची या तुम्हें कोई अपने जीवन की याद आ गई जो तुम इतने व्यर्थ हो गए? तुम्हारे चेहरे से तो लगता है कि तुम अत्यंत निर्दयी क्रूर हो, तुम्हारे अंदर ये कोमलता का भाव कहां से आया? तब उसने कहा कि तुम नहीं जानते, तुम पहचानोगे भी नहीं, ये जो बालक का चित्र है वो मेरा ही है, मेरे रोने का कारण भी इतना सा ही है कि आज दोनों चित्र मेरे सामने हैं, मेरा पूरा जीवन भी मेरे सामने है कि एक क्षण मेरे जीवन के ऐसे थे जबकि लोग मुझे सबसे अधिक श्रेष्ठ अच्छा समझते थे और मुझसे प्रेरणा ग्रहण करना चाहते थे मेरी बालक अवस्था में, और आज मेरी तरफ कोई देखना पसंद नहीं करता, ये भी मेरा एक चेहरा है। भाई हमारे अपने जीवन में भी इतना ही है, हम अपने अंदर झांक करके देखें कि जीवन की सार्थकता हमारे अपने जीवन को निर्मल बनाने में है या कि मलिनताओं को धोने में है। जिस दिन ये अंतरंग में भाव आ जाए कि कब तक हम अपने जीवन में मलिनताओं को धोते रहेंगे, उस दिन जीवन के निर्मल बनने की शुरुआत होगी। आवश्यक जीवन में यही है और इतना ही है कि मैं अपने निर्मलताओं से ऊब जाऊं, मैं अपनी मलिनताओं से ऊब जाऊं, मैं उन्हें अनावश्यक घोषित कर दूं। अभी तो वही सब मुझे आवश्यक मालूम पड़ता है, और जिस दिन मुझे वो सब अनावश्यक मालूम पड़े और निर्मलता ही मेरे लिए आवश्यक है उसका ही सुबह से शाम तक प्रयत्न करूं, तो ऐसी भावना भी हमारे जीवन को बहुत ऊंचा उठा सकती है। इसी भावना के साथ कि हम अपने जीवन को अच्छा बनाएं, बोली आचार्य और विद्यासागर
हे गुरु वर शाश्वत सुख दर्शक यह मग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता आस चांदिग दर्शन करने शिव के निशक
आहा